أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العلم تمهيد. قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجموات. بس ہماری علم منطق میں تعریف علم منطق میں تمام ہو گئی. پتہ چل گیا کہ منطق کی تعریف کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ایک بات جو یہاں پر شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی اپنی اس منطق میں, وہ یہ ہے کہ موضوع علم منطق کیا ہے, اس کی تفصیل انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کی. اگرچہ اپنے ابحاث میں اس بات کو ذکر کیا ہے, لیکن ایک عنوان دے کے, جس طرح کے تعریف منطق کا عنوان دیا, اس طریقے سے موضوع علم منطق کا عنوان دے کر بحث کو ذکر نہیں کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے مدارس میں جب منطق تدریس کی جاتی ہے تو چونکہ یہ موضوع علم منطق کا عنوان اس کے اندر موجود نہیں ہے, لہذا اکثر اوقات مدرسین اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے دکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر طلاب سے جب پوچھا جائے کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے تو وہ تشخیص نہیں دے سکتے. اگرچہ ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نکات ہوتے ہیں, لیکن ایک جملے میں فقط کہہ دینا, جس طرح کہ کہا جائے کہ صرف کا کیا علم صرف کا کیا موضوع ہے, کہتے ہیں کلمہ ہے مسئلہ, نحو کا کیا موضوع ہے, کلمہ و کلام ہے مسئلہ, اس طریقے سے منطق کا کیا موضوع ہے, اس کے بارے میں وہ جواب نہیں دے پاتے, چونکہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے الگ عنوان سے بیان نہیں کیا اور اکثر اوقات تدریس میں اس نقطے کو بھی بیان نہیں کیا جاتا. بس ایک تشنگی جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ موضوع علم منطق پر بحث کی جائے. یہاں پر میں ابھی یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا اس موضوع کو, چونکہ موضوع علم منطق کو سمجھنے کے لیے بعض مقدماتی باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ جس کو شیخ مظفر ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں. جب یہ ابحاث واضح اور روشن ہو جائیں گی اس کے بعد پھر موضوع علم منطق کے بارے میں بحث کریں گے, جب یہ بحث تمام ہو گئی کہ کیا اس کے بارے میں کہا گیا ہے علماء کی طرف سے. پس یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک بات جو ہم نے کرنی ہے وہ موضوع علم منطق کے بارے میں ہے, لیکن وہ ابھی نہیں, بعض مقدمات طے کرنے کے بعد. جب ہمیں تاریخ علم منطق کے بارے میں پتہ چل گیا, فائدہ علم منطق معلوم ہو گیا اور تاریخ علم منطق بھی واضح ہو گئی کہ تاریخ علم منطق اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایسے قواعد بیان کیے جاتے ہیں جو انسان کو خطا فکری سے بچائیں. اب انسان نے فکر جب کرنی ہے تو فکر کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ فکر کی تعریف ہم پڑھیں گے آگے جا کے. فکر کیا ہے؟ معلومات کے درمیان حرکت کرنا اور پھر معلوم سے مجھول کی طرف جانا فکر کہلاتا ہے. بس فکر کا ڈائریکٹ تعلق علم کے ساتھ ہے, تو اب ضروری ہے کہ علم کی حقیقت کے بارے میں بات کی جائے کہ علم کیا چیز ہے. اسی مناسبت سے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے العلم کے عنوان سے اس بحث کو شروع کرنا چاہا. حاشیے میں آپ دیکھیں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں, اس کو متن میں نہیں لے کر آئے. وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو علم ہم نے کہا ہے اس علم سے کیا مراد ہے. معمولاً علم کی مختلف قسمیں کی جاتی ہیں, ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ علم یا علم حصولی ہے یا علم علم حضوری ہے. یعنی کیا مراد علم حصولی علم حضوری سے؟ दिक्कत करें, आपको पहले आपने ये चीजें पढ़ी हुई होंगी, थोड़ा मैं वजाहत करने के लिए ताकि कोई भी मतलब इसको सुने तो उसके लिए मतलब वाजे हो जाए। इंसान जब भी किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करता है तो उसके दो रास्ते हैं, दो तरीकों से इल्म हासिल होता है। एक मर्तबा इंसान जब किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करता है तो वास्ता के जरिए इल्म हासिल करता है, डायरेक्ट उस चीज के बारे में इल्म हासिल नहीं कर पाता। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान एक चीज का आलिम बन जाता है खुद उस चीज को जानने के बाद। मसलन इंसान को जब भूख लगती है और इंसान जब इस बात का एहसास करता है कि मैं भूखा हूं, ये जो उसने अपनी भूख के बारे में इल्म हासिल किया है ये बेदुने वास्ता है या माल वास्ता है? बेदुने वास्ता है, खुद भूख इंसान के पास हाजिर होती है। या मसलन अगर इंसान को किसी चीज पर खुशी का इजहार हो तो ये जो खुशी हो तो उसको हासिल होती है और इंसान ये इल्म पैदा कर लेता है कि मैं इस वक्त खुशहाल हूं। इस खुशहाली का इल्म बेदुने वास्ता है, किसी चीज का वास्ता नहीं, इंसान होता है और वो मालूम कि मुझे इस वक्त खुशी का खुशी वाली हालत है मेरी, मुझे इस वक्त भूख लगी है, मैं इस वक्त गमगीन हूं। बस इंसान का अपने नफ्स के हालात के बारे में इल्म बगैर वास्ते के हासिल है। इंसान का नफ्स है और इंसान खुद है, हालात नफ्स है और इंसान खुद है, हालात नफ्स और इंसान के दरमियान किसी चीज का वास्ता नहीं है। लेकिन बाज औकात, बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें एक चीज के बारे में इल्म है। मसलन मुझे इस वक्त आपके बारे में इल्म हासिल है, लेकिन आपके बारे में मुझे इल्म बेदुने वास्ता नहीं है। क्यों? अगर बेदुने वास्ता होता तो आप मेरे नफ्स के पास हाजिर होते, लेकिन आप मेरे नफ्स के पास हाजिर नहीं है। आप अपनी जगह पर बैठे हैं, मेरा नफ्स मैं अपनी जगह पर है, आप मेरे नफ्स पर हाजिर नहीं, बस बेदुने वास्ता नहीं है। बल्कि क्या हुआ कि इंसान जब किसी चीज को देखता है तो इंसान के जहन में उस चीज की सूरत आती है कि जिसको वो देख रहा है, इंसान उस सूरत के जरिए उस चीज का आलिम बनता है। इस वक्त जो मैं आपको देख रहा हूं और आपके वजूद का आलिम हूं, डायरेक्ट आपके वजूद का आलिम नहीं हो, बल्कि सबसे पहले मुझे आपकी सूरत का इल्म हासिल हुआ जो कि मेरे नफ्स के पास हाजिर है। आपको देखने के बाद जो मेरे नफ्स ने आपकी सूरत ली और उस सूरत को मैं आईने के तौर पर देखकर आपको निगाह कर रहा हूं, यानी उस सूरत के जरिए मैं आपको देख रहा हूं। बस ये जो उलूम है हमारे, अक्सर औकात ये इल्म माल वास्ता होते हैं। अपने नफ्स से हटकर आप जितना भी इल्म रखते हैं, अक्सर इल्म इंसान का क्या है? माल वास्ता है, सूरत के साथ है। इंसान एक चीज को देखता है, सूरत जहन में आती है, उस सूरत के जरिए इंसान फिर उस चीज को देख रहा होता है, डायरेक्ट उसको देख नहीं रहा होता। लेकिन ये अमल चूंकि इतना तेजी से रूनुमा होता है, इंसान को ऐसे लगता है जैसे मैं खुद आपको देख रहा हूं। लेकिन अगर दिक्कत फलसफी में चले जाएं तो एहसास होता है कि ना, खुद चीज को तो मैं देख ही नहीं रहा, मैं तो एक सूरत के जरिए इस चीज को देख रहा हूं, वाइला खुद ये चीज तो मेरे पास हाजिर ही नहीं हुई।
खसूसियात है जिनको मैं सोच के उसको,
सूरत यानी इस वक्त आप जिस हालत में बैठे हुए हैं, आपकी सूरत मेरे जहन में आई हुई है और उस सूरत के तनाजुर में मैं आपको देख रहा हूं।
तो वो जो है उसूली हुजूरी जो है वो भी तो कोई ना कोई मफहूम है,
हाँ,
वजूद तो नहीं
वो
है।
वक्त उसूली कहलाएगा जब वो मफहूम बन जाएगा। इस वक्त जब आप अपनी भूख के बारे में इल्म पैदा करते हैं तो कोई मफहूम दरमियान में आता है? डायरेक्ट आपको एहसास हो जाता है मुझे भूख लग रही है। हाँ, जब आप ये जुमला बोलेंगे कि मैं भूखा हूं और मुझे पता चलेगा कि आप भूखे हैं, तो ये वाला इल्म इल्म उसूली बन जाएगा। बारह उसमें फिर बाद में
हुजूरी फिर दूसरे के लिए,
दूसरे मरले में, दूसरे के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए इल्म उसूली, आपके लिए भी इल्म उसूली बनेगा कि जब आप इसको कजिया बना देंगे, आप कहेंगे कि मैं भूखा हूं। अब ये कजिया चाहे आप अपने जहन में बनाएं, चाहे आप जबान से बोलें उसको, लेकिन जिस वक्त आप एहसास कर रहे हैं उस वक्त वो इल्मे हुजूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप आलिम बन रहे हैं कि मैं भूखा हूं, उस वक्त कोई मफहूम आपके और आपके हालात नफ्स के दरमियान हाइल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको देख रहा हूं, आपका इल्म आपकी सूरत के अलावा मुझे इल्म हासिल नहीं, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, मेरा नफ्स यहां बैठा हुआ है, तो मेरा नफ्स यहां बैठे बैठे आपका आलिम कैसे बन रहा है? नफ्स के अंदर यह कुदरत मौजूद है कि जब एक चीज को देखता है तो उसकी एक सूरत हासिल कर लेता है, उसी के मुताबिक फिर सूरत के जिम्मन में इंसान उसको देख रहा होता है।
इसी में अगर मैं कहूं कि मुझे अभी भूख लगी है, भूख लग रही है, ये मेरे लिए हुजूरी
हुजूरी आप एहसास कर रहे हैं,
मैं कहूं कि मुझे दोपहर को भूख लगी थी,
वो हुसूली बन जाएगा,
वो
हुसूली बनेगा उसमें,
वो मेरे लिए भी हुसूली है और
हाँ, चूंकि वो वक्त गुजर गया ना, अभी बात ये हो रही है कि जिस वक्त मैं आलिम बन रहा हूं, जब मैं आलिम बन रहा हूं तो मेरे इल्म की दो सूरतें हैं, तो उस या मैं माल वासिता आलिम बन रहा हूं या मैं बेदूने वास्ता आलिम बन रहा हूं। अगर बेदूने वास्ता हो तो उसको इल्म हुजूरी कहेंगे, और अगर माल वास्ता हो इसको इल्म हुसूली कहेंगे।
और इल्म खारजी बेदूने वास्ता नहीं,
नहीं हो सकता है, जितने भी आप इल्म हासिल करते हैं इल्म हुसूली
है,
इंसान के नफ्स का अपने हालात है, खुद से शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह ने तालिका अच्छा लगाया इसके अंदर, मतलब देखें, अच्छा ये ही तकसीम हो गई, खूब मतलब वाजे हो गया कि इल्म इल्म की दो किस्में हैं, इल्म हुसूली है और इल्म हुजूरी है। अब फरमाते हैं कि ये जो मैंने अल इल्म कहा है इस सफे के अंदर, इस इल्म से मुराद क्या है? आया मुतलक इल्म मुराद है जिसमें इल्म हुसूली और इल्म हुजूरी दोनों शामिल हैं, या ना फकत एक किस्म मुराद है? तो शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह नीचे हाशिया लगाते हैं, देखें, अल मबहूसु अनहु हुना हुवल इल्मुल मुअब्बरु अनहु फी लिसानिल फलासफते बिल इल्म हुसूली। ये जो उन्वान मैंने बनाया है और यहां बहस करना चाहते हैं, यहां मुराद वो इल्म है कि जिसको फलासफा इल्म हुसूली कह करते हैं। बस यहां अल इल्म जो कहा गया है, गोया के कहना ये चाहते हैं अल इल्मुल हुसूली, इल्मे हुसूली यहां पर मुराद है। अमल हुजूरी, इल्मे हुजूरी, इल्मे हुजूरी किस किस को कहते हैं? मसादिक जिक्र कर रहे हैं, का इल्म नफ्स बिजातिहा, जैसा कि आपका अपने नफ्स के बारे में इल्म, आपको अपने बारे में इल्म है या नहीं है? आपको पता है कि मैं हूं, ये इल्म इल्मे हुजूरी है। वबिसिफात अलकाइमत बिजातिहा, और जो नफ्स की सिफात हैं उसके बारे में इल्म जो है वो इल्म हुजूरी कहलाता है। वब अफआलहा व अहकामहा व अहादीसहा अन्नफसिया, अब अफआल नफ्स जो हैं, अहकाम नफ्स जो हैं और नफ्सी अहादीस जो है वो क्या है, इंसान उसको इल्म हुजूरी कहेगा। खुलासा कलाम ये, इल्म हुजूरी इल्मुन नफ्स और हालात नफ्स के बारे में इल्म हुजूरी कहलाता है, वाज़ह है, ये खुलासा कलाम उसका है। खूब बाद में कहते हैं कि खुदावंद मुताल का इल्म, जब वो फिर आप खुद मुताला करेंगे वो हमारे पास में शामिल नहीं है। नीचे फिर जो है आकर फर्क बयान करते हैं इल्म हुसूली और इल्म हुजूरी के दरमियान, तीन फर्क यहां पर बयान किए गए हैं। फरमाते हैं फयकून अल फर्क बैन अल हुसूली वल हुजूरी, इल्म हुसूली और इल्म हुजूरी में फर्क मौजूद है। पहला, अन अल हुसूली हुवा हुजूर सूरत अल मालूम लिल आलिम, इल्म हुसूली के अंदर सूरत मालूम हाजिर होती है आलिम के नजदीक, न खुद मालूम। लेकिन वल हुजूरी हुवा हुजूर नफ्स अल मालूम लिल आलिम, खुद मालूम आलिम के पास हाजिर होता है। जिस तरह की मिसाल दी है, खुशी मालूम है, भूख मालूम है, इंसान इसका आलिम बनता है। जब इंसान अपनी भूख के बारे में आलिम बनता है तो खुद भूख इंसान के पास हाजिर होती है, लिहाजा इल्म हुजूरी में खुद मालूम इंसान के पास हाजिर होता है। यह पहला फर्क। दूसरा फर्क है अन العلم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني, इल्म हुसूली के अंदर मालूम वजूद इल्मी होता है, यानी आप कहेंगे पहले फारसी दूसरी जबान है, यानी बाद में हम बात पढ़ेंगे इसकी कि वजूद की दो किस्में हैं, एक वजूद इल्मी व वजूद जहनी होता है, एक वजूद खारजी व ऐनी होता है। मसलन आपकी जो सूरत मेरे जहन में मौजूद है वो आपका वजूद इल्मी है, और आप जो खारिज में बैठे हुए हैं ये आपका वजूद क्या है, वजूद ऐनी है। अब इल्म उसूली में आपका वजूद इल्मी मेरा मालूम है या वजूद खारजी है, वजूद इल्मी है। इल्म हुसूली के अंदर मालूम वजूद इल्मी होता है, वजूद इल्मी कौन क्यों कौन होता है, वही सूरत जो मेरे जहन में आई हुई है, बस इल्म हुसूली में मालूम वजूद इल्मी है, और इल्म हुजूरी के अंदर क्या है, वजूद ऐनी है। व अन मालूम बिल इल्म हुजूरी वजूदहुल ऐनी, हाँ वजूदहुल इल्मी ऐन वजूद हिल ऐनी। इल्म हुजूरी के अंदर, इल्म हुसूली के अंदर, ऊपर मैं फिर दोबारा तर्जमा करता हूं उसका, अन मालूम बिल इल्म हुसूली वजूदहु अल इल्मी गैरो वजूद हिल इल्मी। इल्म हुसूली के अंदर वजूद इल्मी गैर अज वजूद ऐनी होता है, यानी जो सूरत मेरे जहन में आपकी आई हुई है वो वजूद इल्मी है, वो और चीज है, और आपका वजूद खारजी जो वजूद ऐनी है वो और चीज है। वजूद ऐनी के अपने आसार हैं और वजूद इल्मी के अपने आसार हैं। मसलन अगर मुझे आग के बारे में इल्म हासिल हो जाए तो आग की सूरत मेरे जहन में होगी, दुरुस्त है। अब आग की जो सूरत मेरे जहन में है वो आग का वजूद इल्मी है, और जो खारिज में आग मौजूद है वो वजूद ऐनी है आग का। इन दोनों के अंदर जुदाई मौजूद है, कैसे, कि जो खारजी आग है वो जलाती है लेकिन जो जहनी आग है वो नहीं जलाती। मैं आग का तसव्वुर किए हुआ हूं, मेरा जहन जो है वो जलता ही नहीं है असल, दुरुस्त मुराद है। बस इल्म हुसूली के अंदर मालूम मालूम जो वजूद इल्मी होता है वो वजूद ऐनी का गैर होता है, लेकिन वजूद इल्म हुजूरी के अंदर मालूम का वजूद इल्मी वही उसका वजूद ऐनी होता है, यानी जुदाई नहीं होती। यानी भूख के बारे में जब आपको इल्म हासिल हो रहा है अपनी भूख के बारे में, तो वही आपका मालूम है, वही उसका वजूद ऐनी है, और वही चीज आपके जहन में आती है वजूद ऐनी इल्मी है उसका, यानी फर्क नहीं है इनके दरमियान। तीसरा फर्क, अन्नल मालू अन्नल हुसूली तस्दीक, इल्म हुसूली है कि जो तसव्वुर और तस्दीक में तकसीम होती है होता है, वल हुजूरी ला यनकसमु इला तसव्वुर व तस्दीक, लेकिन इल्म हुजूरी जो है वो तसव्वुर तस्दीक के दरमियान तकसीम नहीं होता। ये तीन अकसाम जो है, तीन फर्क जो है इन्होंने बयान किए इल्म हुसूली व इल्म हुजूरी में। खूब, यहां पर मुराद जो है वो इल्म हुसूली है। क्यों इल्म हुसूली है, ये भी आपके लिए वाज हो जाना चाहिए। इस वजह से चूंकि मंतिक ने फिक्र करना सही करवाना है, और फिक्र का ताल्लुक उलूम इल्म से है, और अक्सर ये क्या इल्म होता है, इल्म हुसूली होता है, क्योंकि खता कहां होती है, खता इल्म हुसूली में है, इल्म हुजूरी में तो खता नहीं हो सकती। मतलब मैं इस वक्त आपके पास नहीं बैठूंगी, आपका और मेरा इल्म हुसूली है, लेकिन मिसाल दे, मतलब मिसाल खुद ही उसी की दे देता हूं। मतलब इस वक्त आपको अगर मसलन रोजे से हैं, तो रोजे की हालत में जब आप भूख का एहसास कर रहे हैं, तो आया कोई कह सकता है आपको कि नहीं आप शायद झूठे हो अपनी बात में, आप गलत कह रहे हो, शायद आप भूखे ना हो। और मैं खुद एहसास कर रहा हूं मैं भूखा हूं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, या मसलन कैसे गलत बयानी कर सकता हूँ, या इंसान को खुद अपने बारे में भी शक नहीं होता कि शायद मैं गलत एहसास कर रहा हूं ना। इंसान बहुत भूख का एहसास कर रहा है, ज़ाफ का एहसास कर रहा है उसके अंदर। इल्मे हुजूरी में तो खता मुमकिन नहीं है, तो खता कहां मुमकिन है, खता इल्मे हुसूली में मुमकिन है। बस इल्मे मंतिक का ताल्लुक इल्मे हुसूली के साथ है, क्योंकि मंतिक ने फिक्र की तसहीह करनी है, और तसहीह वहां की जाती है जहां गलती हो, और गलती कहां है, इल्मे हुसूली के अंदर। बस इल्मे मंतिक का मौजू इल्मे हुसूली के साथ मुर्तबित है, इल्मे हुसूली के अंदर इसकी बात होनी है सारी, तो लिहाजा इस वजह से यहां पर अल इल्म से मुराद इल्मे हुसूली है। अंदाजे जब ये उनवान वाजे हो गया, اب یہاں پر شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ علم کی حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں، علم کی تعریف و حقیقت بیان کرنے سے پہلے. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے عالم ہونے کے مراحل ہیں، یعنی انسان کس کس مرحلے کو طے کر کے انسان کہاں کہاں پر کس کس چیز کا عالم بنتا ہے، وہ مراحل ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. کیسے؟ مثلا کہتے ہیں جب انسان متولد ہوتا ہے تو کسی قسم کا علم نہیں رکھتا. قرآن نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، یعنی اس کو بیان کیا ہے. کیا قرآنی آیت؟ سورہ نحل کی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ خداوند متعال نے تم کو اپنی تمہاری ماؤں کے بطون سے، بطن سے خارج کیا. تمہاری حالت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کے عالم نہیں تھے. پھر کیا کیا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ پھر خداوند متعال نے تمہارے لیے سمع و بصر و قلب قرار دیا تاکہ شاید تم شکر گزار ہو. بس انسان جب پیدا ہوتا ہے انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم موجود نہیں ہوتا. جیسے جیسے یہ انسان بڑھتا جاتا ہے انسان اپنے ان حواس خمسہ کے ذریعے کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے. بچہ حاس جب مارتا ہے، حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ حواس خمسہ پانچ ہیں، جس میں دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، لمس کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے، یہ سننے کی صلاحیت، یہ حواس خمسہ. ان کو حواس ظاہرہ کا نام دیا جاتا ہے، حواس خمسہ ظاہریہ جو نظر آ رہی ہیں، مثلا حواس خمسہ ہیں. ان کے ذریعے کچھ معلومات کو اکٹھا کرتا ہے. کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو گرمی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سردی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، درست ہے. کسی چیز کو دیکھے گا تو اس کے وجود کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا، کسی چیز کے بارے میں آواز سنے گا تو اس کے وجود کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا، کسی چیز کو چکھے گا تو اس کے ذائقے کے بارے میں عالم ہو جائے گا. اس طریقے سے وہ معلومات اپنی اکٹھی کرتا ہے. ان حواس خمسہ کے ذریعے جو وہ معلومات کسب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حسی مرحلہ ہے. یعنی حواس خمسہ کے ذریعے جو چیزیں آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کا ادراک حسی کہلاتا ہے. اب حس کے مرحلہ میں، اب ہاتھ کے ذریعے جس چیز کو لمس کریں گے وہ آپ کا حس ہے، علوم حسی میں آئے گا. اسی طریقے سے باقی حواس خمسہ ہیں. یہاں پر انسان اور حیوان مشترک ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء کو درک کرتا ہے اسی طرح حیوان بھی درک کرتا ہے. حتیٰ بعض حیوانات تو حواس خمسہ میں انسان سے قوی ہیں، مثلا کتا، اس کے سونگھنے کی صلاحیت انسان سے کہیں درجے زیادہ ہے. باز کی دیکھنے کی صلاحیت انسان سے کئی درجے زیادہ ہے. بلندیوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے اور سمندر کے اندر جو ہے تیرنے والی مچھلی اس کی نگاہ کے اندر ہوتی ہے. پر یہ ہے ادراک حسی. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انسان جب حس کے ذریعے معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ معلومات جس جگہ پر آ رہی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں حصے مشترک، درست. مثلا اپنے سامنے ایک گڑھا دیکھیں اور اس کے ارد گرد پانچ لائنیں لگائیں اور یوں تصور کریں کہ پانچ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ اس گڑھے کے اندر آ رہا ہے. حصے مشترک اور حواس خمسہ ظاہری کی کچھ یہی کیفیت ہے. یعنی انسان جب لمس کر رہا ہوتا ہے और लम्स के जरिए कोई चीज दर्क करता है तो वो दर्क कहां पर जाता है? इससे मुश्तरक। इंसान जब चखता है किसी चीज को तो वो चखने के बारे में जो इल्म हासिल हुआ कहां जा रहा होता है? इससे मुश्तरक में। देखने के जरिए भी इसी तरीके से, सुनने के जरिए भी इसी तरीके से, बू के जरिए भी इसी तरीके से। बस हवासे खमसा के जरिए जो इल्म हासिल इंसान कर रहा होता है वो कहां जमा होता है? एक ऐसी जगह पर कि जिसको मनातिका व फलासफा हिस्से मुश्तरक का नाम देते हैं। ना, मुश्तरक से मुराद ये है कि इन तमाम हवासे खमसा के मालूमात सारे एक ही जगह पर आते हैं, एक जगह पर जमा हो रहे होते हैं। इसी वजह से कहा कि एक गड़ा जहन में तसव्वुर करें और पांच लाइनें खींचे और कहें कि इन पांच लाइनों से जो कुछ भी आ रहा है, पांच नहरों से जो कुछ आ रहा है वो इस गड़े के अंदर आ रहा है। तो इस गड़े में चूंकि तमाम चीज जमा हो रही है, बस इस गड़े का नाम क्या रखा हुआ है? नफ्स के अंदर जो चीज मौजूद है उसको हिस्से मुश्तरक कहते हैं। मतलब तोजी के काबिल है, फिर इतनी बार की तदबीर करते हैं इंशाल्लाह बाकी बाद में। قلنا ان الله تعالى خلق الانسان مفطورا على التفكير। خداوند متعال نے، ہم نے چونکہ پہلے بیان کیا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو فکر کرنے والا پیدا کیا ہے، مستعدا لتحصيل المعارف، اور استعداد دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ معارف کو حاصل کر سکے۔ کس کے ذریعے؟ بما اعطیا، جو چیز اس کو عطا کی گئی ہے۔ کون سی چیز عطا کی گئی ہے؟ من قوت عاقلت مفکرہ، من بیانیہ ہے، قوت عاقلہ بیان دے کر بھیجی گئی ہے، قوت مفکرہ دے کر بھیجی گئی ہے، بھیجا گیا ہے انسان کو۔ یمتاز بہا، اور یہ قوت عاقلہ کے ذریعے انسان جدا ہوتا ہے عن العجموات، باقی مخلوقات سے۔ ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من اقسام العلم، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کیا کریں اقسام علم میں کہاں پر جا کر عجموات اور انسان کے درمیان جدائی ہوتی ہے اس مقام کو بیان کریں۔ لا بأس ببيان الموطن، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس مقام کو بیان کریں۔ کس موطن کو؟ موطن هذا الامتياز، جہاں پر یہ دونوں جدا ہو جائیں، انسان اور غیر انسان، حیوانات ہو گئے مثلا، کچھ مواد میں اقسام علم میں سے، جیسا کہ ابھی شروع کیا ہے علم کے اقسام میں سے، ایک علم حسی ہے، ایک علم خیالی ہے، ایک علم باہمی ہے، ایک علم عقلی ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اقسام علم میں سے کہاں پر جا کر یہ جدائی ان کی ہوگی وہ بیان کریں۔ الذی، یہ علم کی صفت ہے، اس علم کی اقسام میں سے کہ الذی نبحث عنہ، کہ جس علم کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ کیوں بیان کریں گے یہ امتیاز کے مرحلے کو بیان کریں گے کہاں سے یہ جدا ہو رہے ہیں؟ مقدمتا لتعریف العلم، تاکہ یہ مقدمہ بنے تعریف علم کو سمجھنے کا، پتہ چل جائے کہ علم کی حقیقت و علم کی حقیقت کیا ہے اور علم کی تعریف کیا ہے۔ ولبیان علاقت المنطق به، اور یہ بھی بات آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ پھر علم کا منطق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، علم منطق میں یہ کیوں بحث کی جا رہی ہے اس کے بارے میں؟ اس دو مطالب کو واضح کرنے کے لیے ہمیں یہ مقدمہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ فنقول، تو پہلا مرحلہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اذا ولد الانسان یولد، جب انسان متولد ہوتا ہے، وہو خالی النفس من کل فکرۃ و علم فعلی، انسان کسی قسم کا جو ہے وہ علم و فکر نہیں رکھتا، سوا ہذا الاستعداد الفطری، فقط وہی استعداد رکھتا ہے کہ جو خدا نے اس کو عطا کر کے بھیجا ہے۔ وَإِذَا نَشَأَ وَأَصْبَحَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ وَيَذُوقُ وَيَشُمُّ وَيَلْمَسُ، انسان جب نشأت کرتا ہے، یعنی ترقی کرتا ہے، وَأَصْبَحَ صُبْحَ کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، یشم و سونگتا ہے، یلمس لمس کرتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے چیزوں کو، ان کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ نراہ یحس بما حوله من الاشیاء، ان حواس خمسہ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو احساس کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ बाज चीजों को अपनी सूंघने के जरिए एहसास करता है कि ये चीज है, बाज का सुनने के जरिए एहसास करता है कि ये चीज मौजूद है, इस तरीके से इसी तरह इंसान है। वह यतअस्सरु बिहा अत्तअस्सुरुल मुनासिब, और फिर क्या करता है, इन अशिया के जरिए मुतअस्सिर होता है और तासुर मुनासिब को हासिल करता है। मसलन अगर गर्म होगा तो गर्मी वाला एहसास करेगा, सर्द होगा सर्दी वाला एहसास करेगा, और इस किस्म की बाकी चीजें। फतनफालो नफ्सहु बिहा, उसका नफ्स मुनफइल हो जाएगा, अगर चोट लगेगी रोएगा, अगर उसको जो है वो उसके साथ खेलेंगे वो हंसेगा, इस किस्म का उसका नफ्स मुनफइल होगा, असर पजीर होगा। फना अरिफ अन्न नफ्सहुल्लती कानत खालियतन, बस हमें ये पता चल गया कि वो नफ्स जो पहले खाली था तवल्लुद की हालत में, असबहत मशगूलतन बिहालतिन जदीदा, इस वक्त उसके अंदर एक हालत जदीद पैदा हो गई है, इस हालत जदीदा को नुसमीहा अलइल्म, इस हालत जदीदा को हम इल्म कहते हैं, क्योंकि बच्चा वाचक हमसा के जरिए जान चुका है गर्मी किसे कहते हैं, जान चुका है सर्दी किसे कहते हैं, और इस किस्म की मालूमात वो इकट्ठी कर चुका है, ये हालत जदीदा इल्म कहलाएगी। लेकिन ये इल्म है कौन से मरहले का, वाहिया अल हिस्सी अल्लजी हुवा लैसा इल्ला हिस्सन नफ्स बिल अशिया, लेकिन ये जो हालत जदीदा है ये इल्म हिस्सी है, और इल्म हिस्सी हासिल नहीं होता मगर ये कि नफ्स अशिया को हिस करे, किसके जरिए हिस करे, अल्लती थनालुहा अल्हवासुल खामस, हवा से खमसा के जरिए हिस करे इसको। हवास खमसा कौन से हैं, अलबासिरतु वस्सामिअतु वश्शाम्मतु वज़्ज़ाइकतु वल्लामिसा, वहाजा अव्वलु दरजतिल इल्म, और यही अव्वलीन दर्जा है, बाकी इंशाल्लाह तोजी आएगी इसके बाद में, आज करते हैं।